सत्पुरुष के अंदर महाराज जी ने पांच गुण बताए हैं, जिसमें से एक निर्मानता है। वो निर्मानता तब आती है जब जीव का मैं भाव जड़ से ही खत्म हो जाता है। इसलिए जीव उस समय ईश्वर रूप है, ईश्वर से अलग उसकी अपनी सत्ता नहीं है। जब तक वो ये मानता है कि मैं भी हूं और ईश्वर भी है, तब तक उसके अंदर वो निर्माणता नहीं होती जिसकी बात सब महाराज जी कर रहे हैं, या निर्माणता, निष्कामता, निःचलता, वो जो पांच गुण बताए हैं उसमें जो ये निर्माणता है वो तब तक नहीं आ सकती, क्योंकि कर्तापन रहित हालत ही निर्माणता है। और जो संसार में निर्माणता हम लोग कहते हैं वो तो मान रहता है, उसको कमजोर करते हैं हम धीरे धीरे करके, तो वो पांच गुण जो हैं, ये पांच विकार जो हैं, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तो वो जो अहंकार है उसको धीरे धीरे कम करना, उसको भी हम निर्माणता कह लेते हैं। तो इस निर्माणता में, उस निर्माणता में जन्म आसमान का अंतर है। तो जीव जब निर्माण हो जाता है तो अपने स्वरूप को उस ईश्वरी सत्ता में लीन कर देता है। उस समय वो जीव आत्म रूप है, गुरु रूप है, वो शाश्वत सत्ता है। और ये समाधि के बाद ये काम होता है। इसलिए महाजी जब जलमादा में थे तो उन्होंने एक बात वहां कही थी कि जिस वस्तु की 14 वर्ष से तलाश थी वो आज इनको प्राप्त हुई है। तो वो जो स्थिति थी उसको आत्मलीनताई भी बोलते हैं। आत्मलीनताई का क्या मतलब हुआ कि मैं अपने आप को जो जीव भाव के साथ देख रहा हूं, अपने आप को ईश्वर से अलग समझ रहा हूँ और ईश्वर की मैं भक्ति कर रहा हूँ, डिवोशन कर रहा हूँ, तो तब तक वो बंधन में है, उसका पुनर्जन्म जरूर होगा, चाहे वो समाधि का मालिक है तब भी।
क्योंकि मैं एग्जिस्ट कर रही हूँ,
तो इसीलिए वहाँ पर जब तक वो कर्तापन जिसकी बात कर रहे हैं महाराज जी, वो मूल अहम भाव जो है कि मेरा अस्तित्व है और ईश्वर का अस्तित्व भी है। तो ये जो मेरा जो लिमिटेड अस्तित्व है, ईश्वर से सेपरेशन जो है मेरी, तो इसलिए मेरी इच्छा होती है, मेरे अंदर इच्छा हो रही है मैं समाधि में जाऊं बार बार। और समाधि में बार बार जाने की कोशिश करता है क्योंकि वहाँ इतना गहरा वो आनंद है, या यूँ कहिए कि किसी भी प्रकार का वहाँ पर मन की रिपिल नहीं है, मन के अंदर कोई संकल्प नहीं है, वहाँ पर समझने हर चीज़ से ऊपर है वो, इसलिए उस स्थिति में उसको केवल चैन मिलता है, शांति मिलती है। तो उस शांति को बार बार प्राप्त करना चाहता है। और जब मन सहित संसार में घूमता है तो कहीं ना कहीं बोझ बना रहता है कि मैंने इतनी बढ़िया संगत बनाई, इस संगति बर्बाद हो रही है, यही बोझ आ गया आपके ऊपर। कारणकर्ता परमेश्वर है, और इसीलिए सारा ये विज्ञान धीरे धीरे जब आपके अंदर बुद्धि में बैठता है तो बुद्धि इतनी विवेकवान हो जाती है, और साथ साथ प्रैक्टिकल करते हुए भी, कि उसको ये बात समझ आ जाती है कि वास्तव में ये माया ही है। जितना भी नाम रूप धारी जगत है ये सब केवल माया है, इसका वास्तविक अस्तित्व कोई नहीं है। इन चीज़ों का निर्णय समाधि में हो चुका होता है, लेकिन फिर भी कर्तापन इतनी बारीक चीज है, उसके बाद भी काफी टाइम लग जाता है। तो वो धीरे धीरे ही जो है वो लीनताई की स्थिति आती है, जहाँ द्वंद्व उसके लिए एक हो जाता है, सुख दुख, मान अपमान, ऊंच नीच सारी जो है उसके लिए वो एक भाव हो जाता है, क्योंकि उसका अब उसके अंदर कर्तापन ही नहीं रहा है। जब कर्तापन नहीं है तो ईश्वर ही करता है, ईश्वर सत्ता ही सत्ता है, तो उसकी स्थिति जो है वो अद्वैत स्थिति है, मोक्ष स्थिति बोलते हैं। जहाँ तक द्वैत है वहाँ तक बंधन है, जहाँ अद्वैत है वहाँ मोक्ष है। तो वो इस देह के रहते रहते वो स्थिति प्राप्त होती है सत्पुरुष को। इसीलिए माँ जी जब स्वरूपा जंगल से वापस आ रहे हैं तो भगत जी को कह रहे हैं कि बनारसी इस समय शरीर इनको ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई छाया संग चल रही हो। तो संबंध ही खत्म हो गया शरीर से। शरीर है अभी, क्योंकि शरीर तो तब तक रहेगा जब तक प्रारब्ध पूरा नहीं होता। प्रारब्ध जब तक जब खत्म होगा तभी शरीर छूटेगा, चाहे लीनताई मिल जाए तब भी, लेकिन कर्तापन नहीं है उसमें। कभी भी छूट जाए उसका संबंध टूट चुका है देह से, कोई बंधन नहीं है उसको। तो वो स्थिति निर्माणता की है, मोक्ष की है। अब विचार करके देखो सत्पुरुष हमको कहाँ से गाइड करते हैं उस स्थिति को पहुँचने के लिए। सबसे पहले वो कह रहे हैं कि प्रेमी तो सबसे पहले जो अनर्थक कर्म है जिसके बारे में तुझे पता है ये गलत है और फिर भी तू कर रहा है, लालच में आके या स्वभाववश, पता है तुझे गलत है और तू कभी नहीं चाहेगा कि कोई दूसरा तेरे साथ यही करे, लेकिन तू फिर भी करता है क्योंकि पांच विकार के रस ले रहा है तू, अभी विकार के रस ले रहा है तू, तो इसीलिए जानते हुए भी तू करता है। तो माँ जी इसलिए कह रहे हैं प्रेमी पहले जो अनर्थक कर्म कर रहा है, जो पता है ये गलत है, तो उसको छोड़। त्याग तो यहीं से शुरू होगा ना। जो गलत है जिसकी सजा दुख रूप भविष्य में आने वाली है तो उसको तो तू छोड़ सकता है ना, इतना ज्ञान तो तेरे में है, तो उसको तो तू तुरंत त्याग दे। उसके बाद वो अगली सीढ़ी कहते हैं, जब तेरा जीवन साफ सुथरा हो गया, अब कहते हैं कि तू जो कुछ भी ये स्वार्थ कर्म है इसमें तू मर्यादा धारण कर। पहले तो सफाई, वो तो 1% भी गलत कर्म तो अलाउड ही नहीं है जिसने ईश्वर मार्ग पर चलना है, मोक्ष मार्ग पर चलना है। जब पूरा साफ सुथरा हो गया जीवन उसका, तब कहते हैं अब तू मर्यादा में जीवन ला, अपने जो दैनिक जीवन की आवश्यकता है उसको धीरे धीरे सिखो। तो धीरे धीरे जब उसकी डेली लाइफ जो है वो संयमित होती है और कमाई भी मर्यादा में करता है, भोग विलास भी मर्यादा में करता है, तो आता नहीं कि मर्यादा में मर्यादा का करे खान पान, चाहे घर में भरे अंबार। तो अंबार भरे भी हुए हैं, तेरे पास बड़े गुण भी हैं पैसा कमाने के, लेकिन तूने नहीं कमाना। तो इसलिए माँ कह रहे हैं प्रेमी फिर दूसरा रास्ता बताते हैं, तेरे पास जो तन मन धन है तन से तू सेवा कर जीवों की, दुखी जीवों की, मन से सेवा कर अर्थात विचार से सेवा कर। किसी किसी का विचार कितने काम का होता है, कोई किसी को आइडिया देगा बेचारे का जीव का चल पड़ेगी उसकी, कोई किसी को आइडिया देगा तो पापों से बच जाएगा, कोई किसी को आइडिया देगा तो सतमार्ग पे चल पड़ेगा। मन की तो बहुत बड़ी सेवा है और धन की सेवा, जो कुछ भी संपत्ति है, वस्तु है, जो कुछ भी मेरे पास मुझे प्राप्त है उससे दूसरों का दुख दूर करने की कोशिश करो। तो तन मन धन जो ईश्वर ने हमको दिया है इसका दूसरों के डेवलपमेंट के लिए, दूसरों के विकास के लिए, दूसरों को के दुख दूर करने के लिए मैं उसका त्याग करो। ये रास्ता देखो त्याग का आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि तूने मन तेरा जहां जहां फंसा हुआ है वहां से तूने उसको मुक्त करना है। मुक्त क्यों करना है, क्योंकि जिस ईश्वर की आशा कर रहा है तो, जिस ईश्वर की तू कल्पना कर रहा है या यूं कहिए कि जिस ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है वो तो अंतर्यामी है, देह के अंदर है, महाराज कह रहे हैं उसका दर्शन तो अंदर होगा, उसके बाद उसका दर्शन सारे जगत में होगा, लेकिन पहले अंदर होगा। तो मन को तो अंदर ले जाना पड़ेगा, दो चिंतन थोड़ा चल सकते हैं, बाहर का भी चिंतन चलता रहे और अंदर ईश्वर का भी चिंतन चलता रहे। शुरू में तो दोनों ही चलेंगे आपके, एकदम से तो आप अबाउट टर्न कर नहीं सकते, लेकिन मन को लाना तो अंदर ही है, क्योंकि अभी तो मन जो है सुख की तलाश वस्तुओं में कर रहा है, संसार में कर रहा है। अब जो शास्त्र पढ़ता है, सत्संग श्रवण करता है, किसी सत्पुरुष का संग करता है, तब जीव को ये समझ में आता है कि ये तो मेरी जिंदगी की बर्बादी है, यहाँ तो चैन कभी मिलेगा ही नहीं मुझे। आशा चैन की कर रहा हूँ, उसके हिसाब से प्लानिंग भी कर रहा हूँ, उसके हिसाब से मैं कर्म भी कर रहा हूँ, लेकिन मिलेगा तो नहीं। महाराज कहते हैं प्रेमी जो चीज़ जहाँ है ही नहीं वहाँ मिलेगी कहाँ से, ये चैन की जिंदगी चाहिए जिसको हम सुख भी कह देते हैं, लेकिन इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि संसारी सुख जो है वो साथ में दुख लेकर आता है, क्योंकि संसारिक सुख जो है वो द्वंद्व रूप है, और द्वंद्व उसे कहते हैं जैसे कि सुख और दुख ये द्वंद्व है, हमेशा संग रहेंगे दोनों, तो सुख से ही दुख का निर्माण हो रहा है, मतलब एक चीज दूसरे का निर्माण भी कर रही है और दूसरे को खत्म भी कर रही है, दुख से ही सुख का भी निर्माण हो रहा है। आपको भूख ज्यादा लगी हो, बड़ी तेज भूख लगी हो, खाना वही है आपके पास, बिल्कुल सेम है, जो आपको भूख कम थी तब खाया था आपने, अब बहुत भूख लगी है तब खा रहे हो आप स्वाद में अंतर देख लो। खाने का सुख आपको तभी ज्यादा आएगा जब भूख का दुख आपने झेला है, इसका मतलब ये दुख से सुख का निर्माण हो रहा है, नहीं हो रहा है। और इसी प्रकार सुख से दुख का निर्माण होता है, जितना ज्यादा सुख की आशा कर लो नहीं उतनी ज्यादा दुखी हो जाओगे, जितने ज्यादा सुख के आप प्लान बना लो उतनी ज्यादा आप दुखी हो जाओगे। आपने यही बना ली, चलो मैंने जो है इंजीनियरिंग में पीएचडी करनी है, बना ली कल्पना बनकर, उसका प्रोफेसर बनना है मैंने, और कल्पना कब बनाओगे जब इंटरमीडिएट में थे दे दाग के बना लिया आपने। अब यदि आपने ये लक्ष्य प्राप्त करना है तो दुख तो शुरू हो गया, पानी हो गया, कितनी पढ़ाई करनी पड़ेगी, कितना एफर्ट करना पड़ेगा, कितना अलर्ट रहना पड़ेगा, और कितने सुख छोड़ना पड़ेंगे, कितने मनोरंजन छोड़ना पड़ेंगे आपको, कितने लोगों का संग छोड़ना पड़ेगा आपको, तो आपका तो तप शुरू हो गया। तो ये सांसारिक तप जो है ये जीव को दुखी करता है, मन के ऊपर बोझ तैयार करता है, हे भगवान ये कब खत्म होगा, तब मैं वो सुख प्राप्त करूंगा जो मेरी कल्पना में, उसका भी गारंटी नहीं आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, इतने हर्डल्स हैं पता ही नहीं, आप पढ़ भी पाओगे नहीं पढ़ पाओगे, आपका शरीर रोगी हो गया, क्या करोगे आप पात्र भी हो गए, डिग्री भी हासिल कर ली, लेकिन भ्रष्टाचार इतना है कि आप पात्र होते हुए भी नहीं बनाया जा रहा आपको। तो आप विचार करो, जो आपने लक्ष्य बना लिया वो तो आपका गारंटी ही नहीं, मिलेगा भी नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां प्रकृति में और सिद्धांत काम करता है, प्रारब्ध का सिद्धांत। संसारी तो नहीं जानते इस बात को, वो तो कहते हैं जो पुरुषार्थ करेंगे वो मिल जाएगा, लेकिन यदि मैंने शास्त्र पढ़े हैं या सही सत्संग श्रवण किया है तो सारे सत्पुरुषों का निर्णय तो यही है, जो होना सो हो रहा प्रभु की आज्ञा में। भगवान कृष्ण भी अर्जुन को यही कह रहे हैं कि तू कह रहा है कि मैं युद्ध करूंगा या नहीं करूंगा, ये तो युद्ध हो चुका है, तेरे प्रारब्ध में युद्ध करना लिखा हुआ है, तो ये तो युद्ध में तो उतरना ही पड़ेगा, इसीलिए तू युद्ध से जो बेचैन हो रहा है तो इसको मेरे प्रति समर्पण करके फिर युद्ध कर, अर्थात ये युद्ध मैं करवा रहा हूं, तेरा इससे कोई संबंध नहीं, वो कारणकर्ता प्रभु खुद है, तेरी देह की जब रचना की प्रभु ने तो प्रारब्ध इसके साथ ही भेज दिया उन्होंने। देह कुछ भी नहीं है, केवल प्रारब्ध चक्र को पूर्ण करने के लिए देह का अस्तित्व है। तो उस देह का प्रारब्ध जैसे ही पूरा होगा उसका अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा, फिर नई देह बन जाएगी, उसके साथ नया प्रारब्ध होगा। तो इसका मतलब हो गया कि पूरा जन्म मैं एक अज्ञानी बनकर तरह तरह के निर्णय करके, जो जीव का स्वभाव तो करेगा ही करेगा, और मैं अपने आप को कर्ता समझता हूं, और करता हूं तो भोगता ही मैं ही हूं, अपने कर्म का फल तो सब जीव भोगते ही। तो अब सवाल यह है कि यदि मैंने संसारी तरीके से जीवन जिया, उसी तरह की मैंने बुद्धि बना ली अपनी, तो फिर तो सारी जिंदगी इस बेचैनी और यह दुख दर्द लेकर मैं जीता रहूंगा ऐसे, क्योंकि इतने आइटम हैं आपके जीवन में, खाली डिग्री ही नहीं लेनी है आपने, घर वालों से भी संबंध है, देह से भी आपका संबंध है, समाज से भी आपका संबंध है, हर जगह तो आप लोगों का संबंध है, और हर व्यक्ति के द्वारा, चाहे वो पूरा का पूरा समाज हो, आप अपने मन के अनुसार चाहते हो रिजल्ट, और आप ये जानते हो अच्छी तरह से, विचार नहीं करते लेकिन जानते हो कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि सब चीज मेरे मन के अनुकूल हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। और आपको सुख कब मिलता है? जब चीज मन के अनुकूल मिलती है आपको, तभी तो सुख होता है। तो आप खुद देख रहे हो कि कुछ चीजें मन के अनुकूल होती हैं, कुछ चीजें मन के प्रतिकूल होती हैं, तो सुख और दुख दोनों साथ रहेंगे नहीं रहेंगे? किसी भी तरीके से सोच लो, सुख दुख जो है वो रहेंगे ही रहेंगे दोनों। तो हर मनुष्य संसार का इतने गहरे अज्ञान में जी रहा है, चाहे वो बड़े से बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति है, लेकिन इतने गहरे अज्ञान में जी रहा है कि वो सुख की ही तमन्ना पाले हुए है, और बार बार वाणी कह रही है कि जो सुख स्थिर ना रहे वो तो दुख का रूप, ऐसे घने कलेश से कैसे पावे छूट। ये सोचना था मैंने, इस सुख दुख के चक्र से मुक्त कैसे हूं मैं, मैंने तो वो रास्ता पकड़ना था, पीएचडी उसमें करनी थी, प्रोफेसर तो मैंने उसका बनना था। तो जो सुख दुख से ऊपर चीज है उसका नाम है शांति, उसका नाम है आनंद, उसका नाम है ज्ञान। किताबी ज्ञान नहीं, ज्ञान में स्थिति है। ईश्वर को ज्ञान रूप भी कहते हैं, ईश्वर को आनंद रूप भी कहते हैं, और ईश्वर को शांत रूप भी कहते हैं। तो इसीलिए ये सुख दुख का जो चक्र है वो ये माया का चक्र कहलाता है। तो नाम रूपात्मक जो सारा जगत है, सारा ब्रह्मांड है, ये माया है। इसमें जीव को केवल बेचैनी मिलेगी, शांति कभी मिल ही नहीं सकती। जो इस सिद्धांत को जानता है, इतनी कम से कम उसको नॉलेज है शास्त्रों की, तो ये चीज़ वो सीख सकता है वो, लेकिन बुद्धि का निश्चय नहीं आएगा, क्योंकि निश्चय आता है करने के बाद। जब किसी सत्पुरुष को देखता है वो, उसके जीवन में ये चीज़ है या नहीं है, सत्पुरुष को देख के उसके अंदर निश्चय आएगा, और पक्का निश्चय तो होगा जो उस सत्पुरुष के मार्गदर्शन के अनुसार वो संसार में करनी करेगा। तो करने की बात महाराज जी कह रहे हैं, ये कैसे चलेगा तो इस सत्मार्ग में, क्योंकि हर इंसान कहीं ना कहीं तो पाप कर ही रहा है, कोई कम कर रहा है, कोई ज़्यादा कर रहा है। तो इसलिए वो कहते हैं, सबसे पहले यदि इस मार्ग पर चलना है तुम्हें, शांति के मार्ग पर, मुक्ति के मार्ग पर, तो तुझको पहले अनर्थक कर्म जो हैं, जिसको जानता है ये गलत है, समाज भी जानता है ये गलत है, वो तूने कदापि नहीं करने। तूने सीधा सीधा सत पर आधारित जीवन बनाना है तुम्हें। उसके पश्चात सेकेंड स्टेप कह रहे हैं कि तूने अपने भोगों को मर्यादा में लाना है, अर्थात इसको धीरे धीरे कम करते जाना है। और प्रभु ने जो तुझको गुण दिए हैं, जो तुझको ये तन मन धन रूपी संपत्ति दी है, इस तन मन धन का जो त्याग है तुम्हें करना है दूसरों की सेवा में। तो सेवा में जब वो भी निष्काम रूप में, और निष्काम रूप कब होता है सेवा का, जब हर वक्त सेवा करते वक्त अंदर ये ध्यान रहता है कि ये सेवा जो मैं कर पा रहा हूं ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये इस देह का प्रारब्ध है। तो ये मौका मुझको मिला है जन्म में इस प्रारब्ध के रूप में कि मैं ये सेवा कर पा रहा हूं, इसका मतलब हो गया ये सेवा प्रभु कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। ये सामग्री है ये भी प्रभु की है, और जो पात्र है सेवा का वो भी प्रभु ने भेजा। तो ये होश उसकी बुद्धि में हर समय बना रहता है। अब विचार करिए, जो पांच विकार हैं जिससे युक्त मेरा सांसारिक जीवन था, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, तो ये पांच विकार मेरे अंदर बेचैनी पैदा करते थे। तो अब जब मैं इस मार्ग पर चल रहा हूं, ऐसी मेरी करनी है, तो आप कल्पना करके बताइए या विचार करके बताइए, ये पांचों विकार धीरे धीरे कम होंगे नहीं होंगे आपके? जब आपने मर्यादा में भोग विलास करना शुरू कर दिया और जो आपके पास गुण है या जो संपत्ति है उससे दूसरे की सेवा करनी शुरू कर दी, वो भी ईश्वर हुक्म में, ईश्वर अच्छा पूर्ण हुई, तो आपके अंदर ये पांचों विकार डे बाय डे कम होंगे या नहीं होंगे? ऑटोमेटिकली कम होंगे, गिन गिन के कम नहीं करोगे आप। तो आपका जो जीवन का प्रोग्राम है और जीवन का जो नजरिया है वो बदला है। तो सतपुरुष ने आपको इस प्रोग्राम पर डाला है। तो इसलिए मां जी पांच नियम की बात करते हैं, ये पांच नियम एक साथ चलते हैं। तो जब इस प्रोग्राम पर चल रहे हो तो सिमरन भी तो करोगे, शास्त्रों का स्वाध्याय भी तो करोगे, सत्संग श्रवण भी तो करोगे, तो सद्विचार भी लगातार आपकी बुद्धि में जाएगा, और सद्विचार जब जाएगा तो असत विचार निकलेगा या असत विचार को रिप्लेस करेगा। आपको जो संशय है बुद्धि में वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे। तो निश्चयात्मक बुद्धि आपके अंदर आएगी, ईश्वर का निश्चय पक्का होगा, और आपको अपने विकार और जीवन की बर्बादी दिखाई पड़ने लगेगी। तो आपके घर वाले भी यदि उल्टा काम कर रहे हैं या भोग विलासी जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो आपका उससे कोई वास्ता नहीं, आप उनको भी अलर्ट करोगे, भाई क्या कर रहे हो, कुछ गुरु की बात भी सुना करो, समझने की कोशिश करो। लेकिन नहीं मानते, उनका जीवन है, क्योंकि आप वेट नहीं करोगे उनका, क्योंकि मौत का सामना आपने अकेले करना है, कोई साथी नहीं होगा उसमें। जन्म भी आपने अकेले लेना है, कोई साथी नहीं होगा उसमें। ये आज के संगी साथी आपके नए जन्म में होंगे साथ, क्या पता ही नहीं आपको? तो हर वक्त जो मौत के संग भी होगा आपके, मौत के समय भी संग होगा, जन्म के समय भी संग होगा, वो ईश्वर वही होगा जिसने आपकी नई देह को प्रारब्ध दिया है, वर्तमान देह को जिसने प्रारब्ध दिया है, वो ईश्वर वही होगा जो गुरु रूप में आपको गाइड कर रहा है। तो इसीलिए वाणी कह रही है, गुरु सम दाता ना कोई, जो खोजे तीन जहान, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में गुरु के समान तेरा भला चाहने वाला कोई नहीं हो सकता। इसलिए जिसने गुरु का पल्ला पकड़ा है, पूर्ण ऋषि का पल्ला पकड़ा है, उसका तो रास्ता सीधा हो ही जाएगा। तो बताइए, इस मनुष्य जन्म को मैंने कितना अलर्ट होकर व्यतीत करना है, हर दिन हर घंटा इसका, मैं कैसे एक दिन भी बर्बाद कर सकता हूं? क्योंकि कितने बंधन मैंने काटने हैं, विचार करके तो देखो, पांच विकार के कितने बंधन हैं। देह के प्रति ही मोह कितना गहरा है कि मैं देह हूं। सब कुछ सुनने के बाद, सब कुछ पढ़ने के बाद मेरी मंदिर से यह भाव ही नहीं निकलता कि मैं देह हूं। आप खुद देख लो, इस भाव के निकलने में आप कितनी बार फेल होते हो। तो इसीलिए हम देखते हैं कि सिमरन तक में फेल हो जाते हैं, क्योंकि सिमरन में भी बस मैं देह हूं इस भाव के साथ ही आप स्मरण करते हो, क्योंकि संकल्प जो आपको आते हैं मन के अंदर स्मरण करते वक्त, वो संकल्प सारे ज्यादातर क्रिया के ही तो आते हैं, सुख प्राप्ति के या दुख मिल रहा है, कैसे मुक्त होऊंगा, कौन सा काम बन गया, कौन सा बिगड़ गया, तो अल्टीमेटली उसमें भी आप देह बन के ही घूम रहे हो संकल्पों में, समझ नहीं, और उसी के बंधन में हो। तो वहां महाजी कह रहे हैं, प्रेमी बिना विवेक और बिना वैराग्य के सही अभ्यास नहीं होता। तो विवेक है क्या? अपने बारे में सही समझ, ईश्वर के बारे में सही समझ, यही तो विवेक है। तो ये शास्त्रों का स्वाध्याय करते करते, उस पर मनन करते करते, आपके अंदर ये बातें हर समय विचार में घूमती रहती हैं, फिर वो सिमरन के समय भी घूमती हैं, जब सिमरन में बैठे हो कि मैं जीव हूं, मैं जान रहा हूं कि मेरे मन में क्या चल रहा है, मन मेरा है ये, लेकिन मैं मन के बंधन में हूं, संकल्प आपको परेशान कर रहा है, तो आप संकल्प के बंधन में हो या नहीं हो, उसी का नाम मन है। तो मैं मन के बंधन में हूं, और देह यदि आपका खटर पटर कर रही है, सिमरन भी नहीं करने दे रही है, कहीं दर्द हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो देह के बंधन में हूं मैं, सिमरन करना चाह रहा हूं, देह करने नहीं दे रही है, देह का भय भी है, कहीं ये बीमार तो नहीं हो जाएगी, कहीं ये मर तो नहीं जाएगी। तो आपका जो सिमरन के वक्त जो है, जो ये चिंतन है, जो संसार के संकल्प आया करते थे, उसकी जगह दूसरे तरह के संकल्प आते हैं, आते तो हैं वो, लेकिन वो संकल्प रिप्लेस हो जाते हैं, विवेक के संकल्प आते हैं। आप एक जागरूक इंसान होते हो, जो अपने बारे में जागरूक है, ईश्वर के बारे में जागरूक है, इस माया के बारे में जागरूक। तो सिमरन में आप इस मन से आसानी से लड़ सकते हो, विवेक के बल पे ही तो लड़ोगे भैया। यदि आपकी बुद्धि में सतविचार ही नहीं बैठा हुआ है, उसका उसी का निर्णय नहीं हुआ है, तो किस आधार पे लड़ोगे आप? मन को हुक्म दोगे कि क्यों जा रहा है जलेबी की दुकान पे, यहीं बैठ? मन रुकेगा क्या? जितनी बार और जबरदस्ती रुकोगे और कसके याद करेगा जलेबी को ही। इसीलिए विवेक के बल पर मन रुकता है, आपको वो विचार उस समय रिपीट करना पड़ता है जब मन वश में नहीं आ रहा है, कि क्या दुर्दशा होने वाली है, जो तू तो संसार में प्राप्त करना चाह रहा है, तेरी क्या दुर्दशा होने वाली है, उसका एनालिसिस तेरे सामने होता है, और फिर विवेक से होता क्या है, ईश्वर का महत्व तो बढ़ता है। अभी पैसे का महत्व तो बढ़ा हुआ है ना, तो जरा कहीं घाटे का खबर आई नहीं, देखो मन कैसा आपका भागेगा उधर को, आपका सिमरन हो ही नहीं पाएगा, आपके अंदर सामर्थ्य नहीं होगी कि मन को रोक लो। तो सारा घंटा गया आपका सिमरन का, एक संकल्प उठाने आपका पूरा घंटा ले जाएगा वो। तो इसीलिए जब तक आप सत्पुरुष के निर्णय के अनुसार, सत्पुरुष के वाणी वचन या शास्त्र के अनुसार, जब तक आप अपने बुद्धि के निर्णय को बदलते नहीं, उसी के अनुसार आपका चिंतन नहीं बनता, उसी निर्णय के अनुसार जो निर्णय शास्त्र में दिया हुआ है, जो निर्णय समता विलास में दिया हुआ है, जो निर्णय वाणी में दिया हुआ है, इसीलिए आप विचार करके देखो कि लगातार आपको चिंतन मनन की जरूरत है नहीं है, लगातार आपको स्वाध्याय की अध्ययन की जरूरत है या नहीं है। आप अभी मनन करते हो लेकिन संसारी तरीके से करते हो, जैसा संसारी लोग करते हैं, फिर आपने वैसा मनन करना है जैसा गुरु ने सिखाया है। तो ये चीज 24 घंटे की है, अर्थात जब तक आपके अंदर होश है, जाग रहे हो, तब तक आपने सही मनन करना है ना, व्यवहार भी सही करना है ना, जो आपकी मुक्ति में सहायक हो, क्योंकि अब आपको मुक्ति चाहिए, बंधन नहीं चाहिए। आप संसार में मनुष्य जन्म लेकर बंधन खत्म करने आए हो, बंधन कम करने आए हो, बढ़ाने नहीं आए हो। और यदि आपकी सोच संसारी तरीके से है, संसारी कंपटीशन में उतरे हुए हो, तो गए आप काम से। आप तो अपनी बेचैनी बढ़ाकर ही यहां से विदा हो गए, क्योंकि आप कमाई उसी ही कर रहे हो। इसको अमीर बनना कहते ना, ये बेचैनी की कमाई है। आपको इसका पता लगे या ना लगे, ये आपके अंदर बेचैनी के संस्कार पैदा कर देगी, भोगों की प्यास बढ़ा देगी, थोड़े में तो गुजारे नहीं होगा आपका। और ज्यादा में गुजारा करके आप दूसरों से कंपटीशन करोगे और कहोगे मैं तो बड़ा आदमी हूं, इतने तो मेरे खर्चे हैं, और खर्चे हैं तो इतनी मेरी कमाई है। जो तेरी बीमारी है अज्ञानता में, तो उसको भी अपना गुण समझ रहा है। तो इसीलिए ये हमारी दैनिक प्रक्रिया है, रोजाना का जीवन है, 24 घंटे का जीवन है। तो तूने गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार चिंतन करना है, अपने निर्णयों को उनके एनालिसिस के अनुसार, जो विश्लेषण उन्होंने शास्त्रों में दिया है उसके अनुसार तूने सीखना है। वो विद्या है, तो ये बेसिक साइंस है ना अध्यात्म की, कि देह जो है 5 तत्व से बनी है, सारा बाहर की प्रकृति 5 तत्व से बनी है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इन 5 तत्वों के 5 विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो सांसारिक जीवन जो है इसी के अंतर्गत तो है, या इसको ऊपर उठ के भी कुछ है, चाहे डॉक्टर का जीवन है, चाहे वैज्ञानिक का जीवन है, चाहे मजदूर का जीवन है, किसी का भी है, इसी के अंदर तो है। तो फिर और 5 विकार कह रहे हैं कि 5 विकार महादुखदाई जले सकल संसारा। तो मेरे जलने का मतलब क्या, मानसिक बेचैनी। तो जैसे जैसे मेरा संसार में विकास हो रहा है, मेरी मानसिक बेचैनी बढ़ रही है। आज भी आप देख लो, खुले उससे देख लो, एक गांव में चले जाइए, सादा सा जीवन है, एक शहर की चकाचौंध में चले जाइए जहां बड़ी एक्टिव लाइफ है, तो लोगों को कैसी बेचैनी नजर आएगी। और इन्हीं बेचैन लोगों को जरा आप अपने साथ गांव की यात्रा करा लीजिए, तो कहेंगे गांव के खेत देखकर, गांव का बाग देखकर, पेड़ देखकर, लोगों की सादगी देखकर, उनकी सीधी सीधी बातें देखकर, कहेंगे ये तो बड़े सीधे लोग हैं। उनकी सादगी देख के, उनकी जो है सीधापन देखकर, आपको खुद ही शहर के लोगों को बुराई मन में आ जाएगी, बड़े बड़े चालान लोग हैं ये, बड़ा धोखा देते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति का स्वभाव है, उसको सीधापन ही पसंद है, अंदर से सादगी पसंद ही है उसकी। लेकिन क्योंकि समाज ऐसा मिला हुआ है, सोसाइटी ऐसी मिली हुई है, समझ ही नहीं आती बात। अब जब दूसरी सोसाइटी मिलती है हमको, तब पता लगता है, हाँ यहाँ बड़ा चैन है, यहाँ तपोभूमि आते हो तो क्या है, क्या बताओ मुझे, आपको फील नहीं होता चैन है? घर पे तो फैसिलिटी तो बहुत है आपके पास, यहाँ तो उसके मुकाबले में चौथाई भी नहीं है। तो यहाँ एक हफ्ते में मन क्यों नहीं भरता रह के, फिर आपका क्यों मन करता अगली बार तो 15 दिन रहने को मिले किसी तरह से? ये तो आपका अपना अनुभव बता रहा है ना। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि वास्तव में मेरी यही रिक्वायरमेंट है। यहां तो इस प्रकार का जीवन जीने के लिए वातावरण मुझको दिया गया है, जहां इस प्रकार का जीवन मुझको जीना ही पड़ेगा। तो जीवन जी के मुझे पता लग रहा है कि वो तो बड़ा बेचैनी का जीवन है संसार का, यहां तो बड़ा चैन का जीवन है। सादा खा रहे हो, कोई भोग विलास नहीं आपको, नहीं कोई सोने बैठने के आराम नहीं, या कोई स्पेशल यहाँ पर प्राकृतिक जीवन है, सादा खाना मिल रहा है और प्रभु की सादी सादी बातें सुनने को मिल रही हैं। तो इसमें यदि चैन है तो मैं इस जीवन को क्यों नहीं अपनाता घर जाकर? ये तो सिद्ध हो गया ना फिर। ये चैन वाला है जीवन, इसका मतलब गुरु ठीक कह रहा है। तो जो ईश्वर मार्ग का राही है वो शहर के शोर में भी उस बेचैनी से मुक्त रह सकता है जो आम संसारी उस बेचैनी को भोगते हैं। लेकिन ये कब हो सकता है? जब अंदर से वो लक्ष्य बन जाए आपका कि मैंने ईश्वर को प्राप्त करना ही करना है और मैं कर सकता हूं। क्यों कर सकता हूं? क्योंकि वो अंतर्यामी है। कहीं बाहर जाके मार्केट में नहीं खोजना, मैंने जंगलों में जाके नहीं खोजना, देह के अंदर मौजूद है वो। केवल मैंने अपने सोचने के, रहने के, कर्म के तरीके बदलने हैं बस। और उसके लिए सत्पुरुष लिखित मार्गदर्शन कर रहा है आपका। तो जब मैं उसके अनुसार जीवन जीता हूं तो अंतर्यामी ईश्वर के जब मुझको दर्शन होते हैं, उसका जब बोध होता है, तब ये निर्माणता मेरे जीवन में आती है और पूर्ण तरह से मैं सत्पुरुष की तरह से या गुरु की तरह से मैं निर्माण हो जाता हूँ। यदि मैं अपने आप को मन के चंगुल से छुड़ाकर साधना करते करते ईश्वर के साथ एक हो जाऊँ, अंतर्यामी ईश्वर के साथ एक हो जाऊँ, तब मैं भी निर्माण हो जाता हूँ। तो इसीलिए ये अमृत मार्ग है, शांति का मार्ग है, आनंद का मार्ग है, जो करे सो उतरे पार। ओम ब्रह्म।